हुआ है यहाँ, क्या कर रही हो? जॉन
भागी अम्मी, क्लिनिक से भाग के आई हूँ ताकि आपसे मिल सकूं।
नशा छोड़ दो, ड्रग्स लेना छोड़ना पड़ेगा, इस लड़के कभी भूल जाओ।
वो मुझे ले जाएंगे।
बैठो, जब वापस आऊंगी उस लड़के का एड्रेस मेरी मेज पर होना चाहिए।
मैं थाने वापस नहीं जाना चाहता, जब तक मुमकिन हो वहां नहीं जाना चाहता। मेरी बेटी को नीचे बुलाओ।
मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे, मैं यहाँ से फिर से भाग जाऊंगी। छोड़ो मुझे, मुझे सबसे नफरत है, मुझे सबसे नफरत है, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे,
चुप रहो, चिल्लाओ नहीं।
मुझे सबसे नफरत है सब,
शोर मत मचाओ, इंजेक्शन लगाने
को। मुझे सबसे नफरत है सब, बहुत बुरे हैं, मैं फिर यहाँ से भाग जाऊंगी।
आराम से
छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, यहाँ नहीं रहना है।
हिलो नहीं, इंजेक्शन लगाने को।
मुझे मुझे यहाँ से जाना है, मुझे सबसे नफरत है, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो।
बस हो गया, बस 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 हो गया बस। इंजेक्शन लगा दिया, अब जल्द सो जाएगी।
चली जाऊंगी यहाँ से, खुदाया, या अल्लाह, छोड़ दो मुझे।
ये मोहम्मद जवाद जो भी बात कहता है मेरे जहन में बैठ जाती है। तुम तो मुझे जानती हो, मेरा हाफिजा कमजोर है, लेकिन ये छोटे बच्चों की तरह जो हर अच्छी बात जहां भी सुनते हैं फौरन उसको नोट कर लेते हैं अपनी डायरी में, वैसे ही जो कुछ मोहम्मद जवाद कहता है फौरन मेरा जहन नोट कर लेता है। एक बार बहुत पहले जब अपने पुराने मोहल्ले निजामाबाद में एक 20 साल का बेकार और फजूल लड़का था, उस वक्त मोहम्मद जवाद ने मुझे एक लड़का दिखाया जो नशे में था। कहा कि वो गलत रास्ते पर चलकर वहां पहुंचा, चूंकि उसके बाप ने हलाल खाना उसे नहीं खिलाया। वो बात मेरे जहन में रही जब तक कि मेरी आंख खुली और देखा घर दामाद बना बैठा हूं, अपने ससुर के घमंड और पैसे के साए में और उस बकवास हंसी के पीछे अपना इश्क खो चुका हूं। अपना इश्क भी खो चुका था और गुरूर भी। उस वक्त मैंने अपने आप से कहा कि अगर अब हयूला के चंगुल से बाहर निकलना चाहते हो तो खुद भी हयूला बनना पड़ेगा। इसलिए हयूला बन गया और पैसे कमाने लगा। अब जैसे भी हुआ, उस वक्त सिर्फ तुम मेरे पास थी। जानती हो जब तुम्हारी रिपोर्ट मुस्बत आई तो मैंने क्या सोचा, मोहम्मद जवाद की बात, मैंने तुम्हारी माँ को बर्दाश्त किया ताकि पैसे कमा सकूं। वो जो मैंने किया उसके लिए गुंडागर्दी करनी पड़ी। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे दो दो इश्क से बचना था। एक तो सबसे बड़ा इश्क है, वो भी माँ से इश्क। मैं इतनी ऊंची आवाज में बोल रहा हूँ ताकि अपने दिमाग की बात ना सुन सके। याद दिलाना, जब मेरी तबीयत और तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो तुमको एक अहम राज बताऊंगा। वो राज जो एक औरत का है जिसके जरिए मैंने पैसे कमाए। बेटी, मैं कभी तुम्हारा जहन नहीं पढ़ सका, लेकिन अगर तुम मेरे दिमाग की बात पढ़ सको तो ये मत सोचना तुम लोगों के लिए भी हयूला हूं। नहीं, तुम्हारे लिए चॉकलेट हूं। मेरा जहन पढ़ लो बेटी। जब तक तुम यहां रहोगी और इस बीमारी से लड़ती रहोगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक हो जाओगी, कहो। अच्छा, मैं जानता हूँ नाइबी साहब वहाँ हैं और सुन रहे हैं। सुन लो,
अब अर्दलान तमजीद गलत तरीके से पैसे नहीं कमाएगा, तुम्हारी एजेंसी से निकल जाएगा और अपने बाप की एजेंसी में चला जाएगा, अपने बच्चों के साथ रहेगा। सबसे कह देना, अपने साथियों से कह दो कि अर्दलान तमजीद जो बचपन से तुम लोगों के जाल में फंसा हुआ था और पैसे कमाता रहा,
अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम्हारी गुलामी छोड़ रहा है। कह दो कि जानता हूँ वो मेरे पास हैं। कह दो कि जानता हूँ मेरे ससुर की तरह मुझे भी बर्बाद करना चाहोगे।
लेकिन ये भी कह देना, अगर अर्दलान को डुबोने की कोशिश भी की तो अर्दलान तुम सबको डुबो देने के लिए तैयार है।
राना साहिबा, बीजन की बेटी।
पहचान लिया?
6 साल कुछ ज्यादा नहीं है,
लेकिन इतना ज्यादा था कि मेरे बाप को भुला सकते थे। इतने पैगाम दिए कि मैं खुद आजिज आ गई। यहाँ उनके खिलाफ आप लोगों के पास इतने सबूत थे कि कभी उसका जिक्र उनके सामने नहीं किया, इसकी वजह मुझे मालूम है। चूँकि मेरे बाप की आप लोगों को ज़रूरत ख़त्म हो गई थी, इसलिए कि उनको छोड़ दिया और उनकी जगह उनके दामाद को खेल में शामिल कर लिया। मेरा बाप एक पिटा हुआ मोहरा बन गया और दलान आपके खेल का सबसे अच्छा प्लेयर।
मैं बीजन के साथ काम करता था। वैसे मेरी आदत है कि अपने मुखातिब से डायरेक्ट बात करता हूँ उसकी बेटी के जरिए। पुदीने का ये शरबत है, कासनी, बीदमिश्क, बहार नारंज, शातरा, किस चीज़ के अरक का शरबत पीना चाहती है?
कोई शिकायत करने नहीं आई हूँ, वो भी एक शराबी बाप के लिए। जब से मैंने आँख खोली है मेरा बाप एक मुस्तकिल शराबी था, इसीलिए कोई शिकायत का मौका उन्होंने नहीं दिया है। मैं अगर दुनिया के दूसरे कोने में रहने लगी तो इस वजह से नहीं कि मुझे अपने शराबी बाप के पास, मेरी मुश्किल कुछ और थी। लेकिन मेरा मुस्तकिल शराबी बाप आप लोगों के लिए कितना मुफीद था, तो क्या उनकी मजबूर बेटी आपसे कोई उम्मीद नहीं रख सकती?
मुफीद मुफीद तो मेरे लिए ये औरत है जो मेरे लिए काम करती है, पार्ट टाइम काम करती है, मुझसे नफरत भी करती है, लेकिन इतनी वफादारी उसमें पाई जाती है कि अपना काम ठीक से करती है। झूठ, धोखे और गद्दारी के बगैर बर्तन धोती है, सब्जियां साफ करती है। मुझे उसके सामने सिर्फ अपने बुरे रवैये से शर्मिंदगी होती है, लेकिन अर्दलान के एक एक कदम में फरेब था और झूठ। बीजन ने जो कदम उठाए वो भी फरेब और झूठ की बुनियाद पर थे। हम सब कुछ गंदे कॉकरोचों की तरह एक माचिस के डिब्बे में जमा हो गए थे और हिलते जुलते रहते थे। लोग हमसे नफरत करते हैं। इतनी दूर से यहाँ आई हो ये सब मुझे याद दिलाने के लिए? तुम मुझे क्या याद दिलाना चाहती हो? जो अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर दूसरे मुल्क में घूमने जा सकती है उसकी जगह वहीं पर है। अब कर्जखाओं की तरह मत बोलो, बात क्या है ये बताओ।
मुझे मेरे बच्चे चाहिए, कानून मुझे कोई हक नहीं देगा। मेरी अम्मी कहती है तुम छोड़कर वापस आ जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। आखिरी रास्ता बताइए, कोई आखिरी रास्ता?
सिर्फ अपने बच्चे चाहिए? लेकिन कभी तुम्हें अर्दलान से प्यार था, अब नहीं है? नहीं है।
आखिरी रास्ता आप हैं, क्योंकि अर्दलान आपके दर का गुलाम है, वो दर जिसके बारे में सब जानती हूँ। तो फिर आप मेरी मदद कीजिएगा बच्चों को वापस लेने में। मुझे यकीन है कि आप मदद करेंगे। उसकी रोबो दबदबे को मत देखिए, उसके पास सिर्फ आपकी हिमायत है और एक दोस्त जिसका नाम मोहम्मद जवाद है।
सलामुन अलैकुम मोहम्मद जवाद।
अलैकुम अस्सलाम।
कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र।
ये मेरे बूढ़े दोस्त की क्या खैर खबर?
लाइब्रेरी में है, मैं उन्हीं के लिए दूध ले जा रहा हूँ।
आप ये अल्लाह कहकर आगे बढ़िए, मैं दूध लेकर आ रहा हूँ।
अज़र नहीं है, आइए आइए तशरीफ़ लें।
आजकल कुछ हुआ है ना जिसकी खबर मुझे भी है और तुम्हें भी है ना?
जी हाँ, अर्दलान मुझसे कह रहा था कि मरियम साहिबा आप कहीं देखा है।
मेरी बच्ची फिर से गम लेकर बैठ गई। जब से उसे देखा है 20 साल पुराने गम फिर से ताज़ा हो गए हैं।
ले लीजिए।
शुक्रिया आपका।
आंटी फाल मुझसे खरीद लेंगी?
फाल
जी।
कितने की है?
500 का एक है।
खाना खा चुके हो? ये लो। अस्सलामुअलैकुम।
ज़ियारत कबूल हो।
बहुत मज़ा आया अम्मी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मिन्नत समाजत काम आ गई एक दिन की छुट्टी के लिए। ये देखिए सौगात भी लाई हूँ।
बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं अम्मी।
हल्की हो गई ना?
हल्की थी और भी ज़्यादा हल्की हो गई। बाबा कहाँ है?
तो फिर मुझे भी हल्का कर दो।
क्या मतलब?
मतलब तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, शादी कर लो और मेरी फिक्र को भी हल्का कर दो, मेरे दिल को हल्का कर दो।
लग रहा है कि मुझसे उकता गई हैं आप। मैंने हमेशा कोशिश की कि आपको परेशान ना करूं अम्मी।
शादी कर लो।
अब लड़का कहाँ मिल रहा है?
मिल गया है। ये पहला थोड़ी है, किसी को तो हाँ कहो।
अम्मी जान असल में मैं बिल्कुल भी
नहीं दो। शायद इसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में आ जाए।
सारी मोहब्बत आप और बाबा ने अपने कब्जे में कर ली है।
अगर हम दोनों ने सारी मोहब्बत कब्जे में कर ली तो उसको देखने के बाद कैसे फौरन ज़ियारत पे चली गई कि हल्की हो जाओ?
किसको देखने के बाद?
अर्दलान तमजीद।
अम्मी जान अगर आज मैं ज़ियारत करने गई थी तो वो सईद की हर साल की नज़र पूरी करने के लिए, और अर्दलान को देखकर जो मेरी हालत हुई वो आप लोग की हालत याद आ गई थी, इसलिए तबीयत ख़राब हो गई थी। इसीलिए अस्सलामु अलैकुम बाबा।
अस्सलामु
अलैकुम। अस्सलाम। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। इस वक्त भी अपने आप से नाराज हूँ और ये हालत हो गई है, चूंकि किसी के बुरे काम पर राजी हो गया। खुदा का सब्र बंदों से कहीं ज्यादा है। सब्र किया लेकिन आखिर उसके सब्र का भी पैमाना लबरेज हो गया और कहा, अरे भाई दुनिया का कोई मालिक है, अगर कुछ साल पहले दूसरे की इज्जत दांव पर लगाई तो अब तुम्हारी इज्जत की बारी है। उसकी बीवी 6 साल पहले उसे छोड़कर गई। अर्दलान तमजीद की बात कर रहा हूँ। उसकी लड़की नशा करने लगी और वो खुद दर बदर उस लड़के की तलाश में है जिसने उसकी बेटी की हालत की है। अभी हाजी सानी के घर पर था, ये बातें मोहम्मद जवाद ने बताई हैं। कह रहा था कि अर्दलान की जिंदगी बड़ी शान से नहीं चल रही है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसे माफ कर देते हैं, लेकिन इस वक्त
मैं उस लड़के को जानती हूँ।
मुझे छुड़वाया था कि मुझसे बात ना करें,
अम्मी, जुर्माने का पैसा कहां से लाएं? हाँ, एक बची हुई चूड़ी भी बेच दी। हाँ, अपना हाथ दिखाइए। चूड़ी के अलावा घर का कालीन भी क्या? कबाड़िये को बुलाया था, अपनी इज्जत भी बेच डाली। तबाह हो जाऊं मैं।
इत्तेफाक से जब कबाड़ी वाला कालीन बगल में दबाए जा रहा था तो ये मुकरम साहिबा पड़ोस वाली कहने लगी कि अरे क्यों घर का कालीन बेच रही हो? तो लैला ने इज्जत बचाने के लिए कहा कि वो मेरे कॉलेज की फीस के लिए है। इसके बाद पता है मुकरम साहिबा ने क्या कहा? कहा, शाबाश अकरम, अपने घर का कालीन बच्चों की पढ़ाई के लिए बेच रही हो। जब कसाई के यहाँ गोश्त लेने जाती हूँ ना, तो 5,000 तुमान का गोश्त खरीदने में मुझे शर्म नहीं आती। नहीं है तो इसमें शर्म की क्या बात?
मैं मुनशियात फरोश नहीं हूँ अम्मी।
हाँ हाँ भाई, तुम तो इमला में फेल हुए थे, तभी उसके अजाले के लिए कालीन बेचना पड़ गया।
मैं अजाला कर दूंगा अम्मी।
वाकई वाकई तुम अजाला करोगे?
जी।
तो फिर उठो, वुजू करो, नमाज पढ़ो और फिर कसम खाओ कि अब उस लड़की के आसपास भी नजर नहीं आओगे।
अम्मी, आपको मेरी शादी से कोई प्रॉब्लम है?
हाँ, उस नशेई लड़की के साथ शादी में प्रॉब्लम है मुझे। अपने से बेहतर एक घराने से शादी में प्रॉब्लम है मुझे।
कौन हमसे बेहतर घराना?
तुम्हारी नीयत से मुझे प्रॉब्लम है।
कैसी नीयत अम्मी?
के पैसे भी लाओगे और दुल्हन भी लाओगे।
तो इसमें बुरा क्या है? अगर इंसान का ससुर उसकी मदद करे तो मुश्किल क्या है?
अगर इंसान की खुदा मदद करे तो मुश्किल क्या है?
अम्मी, अगर मेरी कोई मदद करे तो जैसे आपकी कोई मदद कर रहा है।
खुदा है?
खुदा कहाँ है? आपके पास सिर्फ गोश्त खरीदने के लिए 5,000 है।
अच्छा, तो खुदा उस वक्त खुदा है कि मेरे पास 40,000 तुमान गोश्त खरीदने और खाने के लिए हूँ। तुम्हारे मरहूम बाप अपनी ज़िंदगी में कहते थे कि आधा घंटा सोचने के बाद सिर्फ एक जुमला, वो भी सलीके का। मैं भी तुमसे सलीके का जुमला कहना चाहती हूँ। जब तुम्हें पकड़ा था तो मैं उस लड़की के घर गई थी कि देखूँ उसकी माँ कौन है, बाप कौन है। मैं कहने गई थी कि इंसानों के बच्चे मुर्गे और मुर्गे की तरह नहीं होते कि उन्हें गली कूचों में फिरने के लिए छोड़ दिया जाए ताकि खुद से बड़े हो जाएं। उनसे कहने गई थी कि अपने बेटे के पैरों को तोड़ दूंगी अगर वो गलत राह पर चलेगा। तो फिर आप भी अपनी बेटी के पैरों को तोड़ दीजिएगा, चूँकि उसने गलत काम किया है। और परसों से ढंग का कपड़ा पहनकर वो काम करने जाओगे जो तुम्हारे मामू ने तुम्हारे लिए ढूंढा है। मुझे तुमसे एक पाई भी नहीं चाहिए। तुम्हारे मरहूम बाप के उनके नाम से जो पैसे आते हैं उसी से हम दोनों की ज़िंदगी चल जाएगी। मुश्किल से चलेगी लेकिन चलेगी, बहुत से लोगों की ज़िंदगी की तरह। अगर महीने में एक बार भी गोश्त खाए ना तो 1 ग्राम अकल बढ़ेगी और ना घटेगी।
लेकिन तुम जो काम करोगे तुम कमाओगे और बचाओगे अपने मुस्तकबिल के लिए, सीधे जाओगे और वापस आओगे, समझ गए फरजाद? समझ गए तुम?
जी समझ गया।
कारपेट है?
नहीं, वॉशिंग मशीन है।
अरे हाथ का बनाए क्या?
अब ज्यादा होशियार मत बनो लैला।
वाह मामू कितना बड़ा है।
ऐसा फरजाद, सलाम अलैकुम बाजी।
अरे मामू गिर न जाए।
अरे तुम परेशान ना हो, गिरेगा नहीं, पकड़े हैं। तुम्हारा भाई मर गया है जो कालीन बेचने लगी है?
उसी से काम चला रहे थे।
ये कैसी बात है, मेरे भी बच्चे कालीन पर रहे और तुम बच्चों के साथ मुकेट पर गुजारो।
बहुत प्यार,
इसे खोलो, इसे खोलो।
बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया।
निकालो ना, जगह बनाओ। बहुत बहुत शुक्रिया।
ये टीवी का एंटीना भी खराब है, उसे भी ठीक कर देंगे।
अरे वो भी ठीक कर दूंगा भाई।
बहुत शुक्रिया मामू।
हाँ नीचे, हाँ नीचे करो।
एक दोस्त था,
दो
बहुत प्यारा था,
तीन
शुक्रिया आपका,
चार
चारा नहीं था,
पांच
जंगला बना था,
छह
शीशा टूटा था,
सात
पत्थर लगा था,
आठ
डांट पड़ी थी,
नौ
मार पड़ी थी।
दस
भाग गया था।
सलाम अलैकुम। रहा कहाँ है?
रहा अभी बताती हूँ रहा कहाँ है। अरसलान जाओ बेटा, तुम्हारी गाड़ी आ गई।
अस्सलाम वालेकुम अरसलान।
ड्राइवर साहब इसको बैठा लो।
ठीक है मैं जा रहा।
तुम वही जलील लड़के हो, कही हो ना?
क्या कह रही
हो? तुम वही बदतमीज लड़के हो जिसकी फोटो अर्दलान को मिली थी।
ठीक है भाई, गरेबान तो छोड़े।
किसी
से कुछ कहा, मतलब उसके बाप से कहा कि मैं यहाँ खड़ा था तो मैं इस घर का दामाद हूँ, कल नहीं तो परसों उसकी बेटी से शादी करूँ, उस वक्त तो सबसे पहले तुम्हें घर से निकालूंगा। लेकिन अगर कोई ऐसी वैसी बात नहीं की और बकवास नहीं की तो तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, तो ये बात तो सुनो,
तुमको यहाँ से क्या काम है? नहीं सुनूंगी।
बात तो
नशे बना दिया और क्लिनिक
बात तो सुनो तुम। बूढ़ी देखो, मुझे बार बार मुझे नशे मत कहा करो।
बूढ़ी औरत तुम्हारी माँ होगी, तुम दूसरों की लड़की के पीछे क्यों पड़े हो?
बूढ़ी
मत सोचना,
बात सुना करो जो मैं कह रहा हूँ। बस बात मेरी सुनो, मैं उससे बात करना चाह रहा हूँ। मैं रहा से बात करूँगा। तुम क्या कह रहे हो?
क्या कर रहे हो?
तुम क्या बकवास कर रहे हो? भागो यहाँ से, भागो यहाँ से।
खुदा तुम्हें जलील करे, खुदा तुम्हें गारत करे, बदबख्त जलील बदतमीज।
हेलो गुलबानो, जवाब क्यों नहीं दे रही?
अरे कुछ मसरूफ थी।
अरसलान चला गया?
अरसलान जी जी जी
जी गया।
कुछ हुआ है गुलबानो?
क्या हुआ है
गुलबानो? तुम जब तक बात बनाओगी कयामत आ चुकी होगी। जब झूठ नहीं बोल सकती तो सच तो बोलो। अरसलान ठीक है ना?
मैं बाहर जाना चाह रही थी तो मैंने देखा है किसी का खत पड़ा है। दरवाजा खोला तो देखा वही बदबख्त लड़का बाहर खड़ा है, उसी ने खत फेंका था।
बदबख्त लड़का कौन है?
अरे वही जिसकी फोटो रहा के कमरे में मिली थी।
कह रहा था रहा कहाँ है? मुझे आपकी मजलूमियत और बुरी हालत और दूसरी तरफ रहा की बेअकली याद आ गई। बस मुझे भी गुस्सा आ गया, उसने अरसलान की सर्विस वाले को भी खूब मारा।
मैं वो खत पढ़ूं?
तुम पढ़ सकती हो क्या?
अपनी हद तक तो हाँ पढ़ सकती हूँ, वैसे बहादुर भी यहाँ है। ठीक है होल्ड कीजिए, ये खत तुम उनके लिए पढ़ दो।
अर्दलान सलाम।
अर्दलान साहब।
अर्दलान साहब सलाम अलैकुम। अर्दलान तमजीद साहब सलाम अलैकुम। अब हिसाब का वक्त आ गया है।
मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ।
आपके कर्ज लेने के बारे में, फैक्ट्री चलाने के बारे में ताकि उससे कर्ज ले सकें, मुख्तलिफ ज़मीनों की खरीद व फरोख्त, बहुत से गैर कानूनी घर बनवाना। मैं आपके तमाम गलत कामों के बारे में जानता हूँ। मैं आपकी तरह लालची नहीं हूँ और ये राज छुपा भी सकता हूँ। लेकिन राज छुपाने के लिए मुझे बस 500 करोड़ तू माल दे दीजिए। बस हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। आप भी मुझे समझा करें। अगले खत में आपको तमाम सबूत भेज दूंगा जो मेरे पास मौजूद है।
ये खातून उस लड़की की अम्मी है।
मेरे और रहा के बाप के बीच कोई ताल्लुक नहीं है सिवाय एक बात के। हम दोनों जानते हैं कि तुम लड़के मेरी बेटी के लिए जहर हो। कल रात मेरी बेटी क्लिनिक से भागकर मेरे पास आई थी। मैंने उसे जबरदस्ती तुम्हारा एड्रेस लिया है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है और इस बर्बादी में तुम जिम्मेदार हो। मैं उसे ले जा रही हूँ और कोई मुझे रोक नहीं सकता, लेकिन एक मुश्किल है। और वो छोटी सी मुश्किल तुम हो। जब तक रहा का काम हो उसे ले जा सकूँ तो टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लेकिन बहर टाइम लगेगा। उस वक्त तक तुम रेहा का पीछा छोड़ो। मैं और रेहा के बाप एक दूसरे के जाने दुश्मन हैं, लेकिन तुमसे बदला लेने के लिए करीबी दोस्त भी बन सकते हैं। रेहा के आसपास नजर ना आना और रेहा की मोहब्बत अपने दिल से निकाल दो, समझे लड़के?
चले मैं उसे भूल गया, क्या रेहा भी मुझे भूल जाएगी?
हाँ भूल जाएगी।
शर्त लगाएं? शर्त लगा सकते हैं, वो मुझसे ज्यादा चाहती है। मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए कुर्बान नहीं कर सकता, अपनी अम्मी को, अपनी बहन को कुर्बान नहीं कर सकता। लेकिन वो मेरे लिए सब कुछ कुर्बान, अपने बाप को छोड़ देगी, अपनी अम्मी को छोड़ सकती है, फौरन छोड़ सकती है, पूरी जिंदगी देने को तैयार है।
फरजाद, तुम उस लड़की के साथ हरगिज शादी नहीं कर सकते, और अगर कर ली तो फिर मुझे भूल जाना।
मैडम, मैडम, आंटी,
क्या चाहिए तुम्हें? हमारे जैसे क्या चाहिए? रहा को नशा करवाया, सुख नहीं मिला। अगर तुम ये समझ रहे हो कि उसके साथ शादी करके तुम भी ऑस्ट्रिया आ सकोगे तो तुम्हारी गलती है।
आप और ऑस्ट्रिया जाएं भाड़ में।
तमीज।
मैं जब उससे मिला वो नशा करती थी, मैंने बस उसकी मदद की, ऐरे गैरे के सामने हाथ न फैलाए।
जो खर्चा किया है उसका हिसाब उसके बाप को दे दो।
हम लोग उसे रसीद कहते हैं।
जो भी कहते हो।
जो भी का क्या मतलब, मेरी बात गौर से सुने। मुझे तुम्हारे राह में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन जो चाहत उसके दिल में है उसके जरिए मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। मैं मामला करना चाहता हूँ, बस उसका बाप मेरी जेब गर्म कर दे, उसके बाद बाकी मुझ पर छोड़ दे। अब बताओ उसके बाप से कहाँ मिला जा सकता है, बताओ, ताकि मामला तय हो जाए। देखो रेहा की अम्मी, मैं बस चाहता हूँ मेरी अम्मी 2-2 लाख का गोश्त खरीद कर घर लाया करें और तुम अपने बेटे के साथ वहीं ऑस्ट्रिया में वहीं पड़ी रहो, ठीक है ना? उसके बाप से तो कुछ ले सकता हूँ ना, तुम दोनों के आपसी ताल्लुकात भी तो अच्छे नहीं, मुश्किल नहीं है ना? नहीं है। अब एड्रेस दो, इस वक्त उसका बाप कहाँ है?
ये मेरा हक है कि आखिरी बार अपनी बेटी से मिल सकूं।
मेरी बात सुनो, तुम्हारी मदद करूंगा, डूबोगे नहीं।
मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं। मैंने रहा की अम्मी को भी बताया था कि मैं देखा।
तुम होते कौन हो जो मेरी बेटी का मेरे सामने नाम ले रहे हो? तुम उसकी अम्मी हो ना?
क्या सुधार दिया उसे?
अरे मुझे छोड़िए, अरे मुझे इस लड़की से शादी करने, वो भी करना चाहती है, प्रॉब्लम है तो जेब में हाथ डालिए।
ये बच्चा तुम्हारी मदद करना चाहता है,
किसने उसे मारा? मैं उसको बर्बाद कर डालूंगा जो भी मेरी बेटी की खुशी ना देख सके।